ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। अगर आपको पिछली कड़ी याद हो तो उसमें हम मुरली की बात कर रहे थे कि बाबा के वो महावाक्य जो जीवन का सूत्र देते जाते हैं। पिछली कड़ी में हमने बात की थी, क्योंकि आज हम उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, कि बाबा ने कहा कि अमृत वेला में जो हम दुआएं लेते हैं, बाबा से जो दुआएं लेते हैं, वो अगर हम दिन भर जो भी मिलता है उसे हम दुआएं देते जाएंगे तो वो सहज विधि है अपना भाग्य बनाने की। क्योंकि ये वो वक्त है, संगम युग जिसे कहा जाता है, डायमंड एज, चाहे कलयुग की त्राही त्राही है, लेकिन क्योंकि हमें अपनी पहचान हो चुकी है, परमात्मा स्वयं आकर अपनी पहचान देकर हम बच्चों को प्यार दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कैसे हम परिवर्तन करेंगे, तो ये वो टाइम है जब हम अपना भाग्य बना सकते हैं। और भाग्य बनाने की सबसे सहज विधि कि बाबा से जो दुआएं हम लेते हैं सुबह अमृत वेला में, वो जितने भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी आत्मा हमारे सामने आती है, उसे आत्मिक रूप में देखते हुए, उस स्वरूप में देखते हुए दुआएं देते जाए। आगे बाबा ने कहा था, अगर हम पिछली मुरली को याद करें, कि जो हमें दुख दे तो हम वो दुख ना लें। अब कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है कि हम दुख कैसे ना लें, क्योंकि जिन हालात में अब हैं, जितने कमजोर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें इंटरप्रेट करने लगते हैं, हमारे साथ चलने लगती हैं वो सारी बातें, और फिर हमारे पास ये सवाल आता है कि हम कैसे ना लें। तो बाबा ने एक सहज विधि बताई है, शुभकामना और शुभ भावना। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे उसे इम्प्लीमेंट करें। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है और सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर हमारे साथ हैं, शीरू बहन। शीरू बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
अभी जो हमने बात की कि पिछली कड़ी में हमने जैसे देखा था, बाबा ने कहा कि दुआएं लो और फिर दुआएं दो, सबसे बड़ी बात यह है, और दुख ना लो। अभी हमने पिछली कड़ी को थोड़ा समेटा है, तो कुछ और आप बताएंगे?
हाँ, तो हम ये बताना चाहेंगे कि दुआएं कौन दे सकता है? जो शक्तिशाली आत्मा होगी। और बददुआएं कौन देता है? जो कमजोर होता है। कई बार हम समझते हैं ये बद्दुआ देता है, ये बड़ा शक्तिशाली होता है, और हम उसको दुआएं दे तो ये तो हमारी कमजोरी है।
हम कैसे दुआएं देंगे? मतलब हम तो फिर त्याग की मूर्ति बन जाएंगे।
जी, तो इसलिए नहीं, जो बद्दुआ देता है वास्तव में वो कमजोर है, वो बहुत अशांत है, वो दुखी है,
वो दर्द में है।
हाँ, इसीलिए वो बद्दुआ दे रहा है। अगर वो सुखी होता, शांतमय होता, शक्तिशाली होता तो ऐसे बद्दुआ नहीं देता। पर मैं कौन हूँ? मैं तो शिव बाबा की संतान हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, बड़ा दिल है मेरा, चलो बद्दुआ दी, पर मुझे तो बद्दुआ क्यों लगेगी? भगवान के वरदान मुझे मिले हुए हैं, तो वो वरदानों में मैं पल रही हूँ, तो मुझे बद्दुआ किसी की नहीं लगेगी। मैं उनसे कोई, मैं उनसे नफरत भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं कहूंगी चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये समझेगा, एक दिन समझेगा जरूर। तो ये भी जैसे दुआ देना है, ये समझेगा, उसके प्रति मेरी शुभकामना है, ये जरूर परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से अगर ये मेरी सोच है तो ये है जैसे दुआ देना। तो दुआ वही दे सकता है जो शक्तिशाली होगा।
तो ये याद हमें रखना है कि हम कमजोर बनना चाहेंगे या शक्ति।
और दूसरा, मेरे अंदर कोई इच्छा न हो कि मुझे उनसे कुछ मिले। अगर मेरे अंदर इच्छा होगी ना तो भी लगेगा कि हाँ मैं दुआ दूँ, नहीं तो फिर ये नहीं देगा मुझे, वो भी नहीं। इच्छा है इसलिए दुआ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मुझ आत्मा के अंदर बहुत शक्ति है, इसलिए ये आत्मा भी कुछ ले ले। जैसे सागर के पास जो आया वो बूंदे लेकर जाए, कुछ न कुछ ले जाए, सागर तो बेहद है, तो उस हिसाब से दुआ देनी।
बिल्कुल। और एक बात हम जो देखें शीरू बहन, जब दुख की बात करते हैं कि हम दुख ना लें, तो दुख हम तब ले रहे होते हैं बेसिकली कि हमारे अंदर वो बात चली जाती है, यू नो, वो अपने हम ब्लॉक तो कर नहीं पाते। किसी ने मेरे साथ कुछ कहा, ऊपर से कहा, या नाराज हुआ मुझसे, या कोई ऐसी बुरी बात कह दी, तो ये हम सोचते हुए नहीं करते कि मैं ये ले रहा हूं, वो स्वतः ही, क्योंकि इतना स्ट्रांग संस्कार बना हुआ है कि वो आता ही है, और मेरा रिएक्शन भी आता है। कई बार वो रिएक्शन एंगर का होता है, कई बार हर्ट का होता है, कई बार डीप हर्ट का होता है, और कई बार उस वक्त तो मैं सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहता, हंसी में उड़ा देता हूँ कि अच्छा अच्छा ओहो अच्छा अच्छा, लेकिन वो डीप डाउन मेरे साथ रहता है वो जख्म।
हाँ, और फिर बाबा ने जैसे कहा है कि हम फिर क्या है शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, जो आगे की पॉइंट आएगी, हम समझते मैं इसको समझाऊं, मैं इसकी बुद्धि में बिठाऊं कि ये गलत कर रहा है और ये ऐसे ऐसे इसको करना चाहिए, तो मैं शिक्षा देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन होता क्या है कि आजकल कोई शिक्षा ही पसंद नहीं करता, दे डोंट लाइक टू बी करेक्टेड, यू नो, करेक्शन किसी को पसंद नहीं है,
क्योंकि आई थिंक जब हम शिक्षा दे रहे हैं हम खुद भी तो अपने उस अपने आप को स्टेटस थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं कि ओ हो इसको नहीं पता ना, चलो मैं बताता हूँ।
तो क्या है जैसे करेक्शन, क्रिटिसिज्म, कमेंट्स, ये सब जो सारी बातें है ना, ये लोगों को आजकल पसंद नहीं है। इसीलिए बाबा कई बार कहते साक्षी दृष्टा होके देखो और सुनो, फिर हाँ रहम भी करो, क्षमा भी करो, शिक्षा भी दो जरूर, लेकिन नहीं दो नहीं तो उल्हेना मिलेगा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, बताना भी है पर कैसे दो, वो बाबा ने अभी क्लियर किया है तो हम सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय बाबा कहते ना, याद रखो एक उंगली उसके तरफ तो तीन उंगली मेरे तरफ और अंगूठा ऊपर। कई बार ऐसे तो ये परमात्मा साक्षी है, वो जानता है गलती किसकी है। दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती, इसलिए मेरा भी तो दोष है, केवल एक का तो दोष नहीं है। इसीलिए हम सोचते मैं उसको ठीक कर दूं। तो शिक्षा तो दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो, क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। अब बहुत अच्छे हो, थोड़ा सा बाकी है, क्षमा, उसको क्षमा भी कर दिया जो उसने भूल की, उसको क्षमा भी कर दिया और उसकी अच्छाई भी वर्णन की। फिर उसके बाद दो शब्द कहो, सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा या रहम, क्षमा या रहम, पर उसके साथ शिक्षा, केवल शिक्षा नहीं। देखो जब हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले स्प्रिट लगाते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं, तो क्या है दर्द कम होगा। सीधा इंजेक्शन चुभोएंगे तो बहुत दर्द होता है, मरहम भी लगाएंगे और फिर कुछ काटना है तो करेंगे भी, तो इसलिए ये दोनों जरूरी है, शिक्षा और क्षमा अथवा रहम। अगर रहम दिल बनकर उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। पहले उसकी महिमा करो, ये बहुत जरूरी है, महिमा करके फिर शिक्षा दो, महिमा करके फिर कहो कि एक बात है, तो वो स्वीकार करेगा।
अच्छा, लेकिन महिमा जब हम करें तब हमारे मन में कई बार थॉट आता है कि हम महिमा करेंगे तभी ये समझेगा, तो वो थॉट से वो उसको
नहीं,
पहले
नहीं, महिमा करेंगे तब समझेगा, ये नहीं सोचकर, रियल
रियल
दिल से उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो विशेषता है, वो भी जरूर बताओ।
क्योंकि वो पता है, वो लोग भी ये सोच लेते हैं कि अच्छा पहले पता है मुझे कि मेरे को पहले मेरी प्रशंसा करके फिर मुझे गला काटेंगे।
नहीं नहीं नहीं, पहले दिल से करो, ये नहीं कि कोई आप बाहरी से या ऊपर ऊपर से कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं तब आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकल जाएगी, क्योंकि क्रोध करके हम शिक्षा दे रहे हैं।
बिल्कुल,
तो वो एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। कई लोग डीट होते हैं, ठीक है तो बोलता ही रहता है,
नहीं हम इल्जाम लगा के दे रहे होते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो फिर वो पहले ही कोई नहीं सुनना चाहता, वो ऑलरेडी उसमें होते हैं।
तो बाबा कहते हैं दूसरे कान से निकल जाएगा, शिक्षा धारण नहीं होगी उसे, ऐसे है ना। तो बाबा पूछे, अनुभव है ना, आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम, रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभकामना। फिर वही दुआ देने की भी विधि वही है, शुभ भावना शुभकामना। शुभ कामना शुभ भावना में अंतर क्या है? शुभ भावना है माना हम उसको उसी ऊंचे स्वरूप में देख रहे हैं, वो है ही उस ऊंचे स्वरूप में, ये शुभ भावना है। और शुभ कामना दे रहे आगे के लिए कि फिर से वो उस ऊंची स्थिति में आ जाए। तो दोनों काम करता है। जैसे कहते हैं ना सच्चा प्यार, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो यह नहीं करे, यह नहीं हो, यह प्रत्यक्ष दिखाई देगा आपका कार्य, क्योंकि आपने क्षमा तो किया। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी।
बिल्कुल, ये तो बहुत और मेरा अपना अनुभव ये कहता है शिरु बहन की डेफिनेटली होता है कि अगर खासकर बच्चों के साथ जो टीनेजर जब होते हैं तो पेरेंट और बच्चों का जो कंटिन्यूस एक झगड़ा रहता है कि माँ या पिता जो है वो कंटिन्यूस बोलते रहते हैं उनको कि ये करो ये करो, और वो सही भी होते हैं क्योंकि ये उम्र ऐसी है जिसमें बच्चा बिल्कुल रिबेल होकर निकल रहा होता है। सो कंटिन्यूस एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड और उसको प्यार और उसको हर चीज में जो उससे गलतियां हुई हैं उसे माफ करते हुए उसको फिर बोलते जाना, वो दैट रियली हेल्प्स
जी।
बिल्कुल, ये बाबा की बात तो
बाबा पूछते हैं तो बताओ क्या वरदान मिला, न दुख देना है न दुख लेना है, ये पसंद है तो पसंद है तो अभी लेना नहीं दुख, गलती नहीं करना। बाबा बड़े प्यार से बच्चों को समझाते गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देते तो फॉलो फादर करना है, बाबा को फॉलो करो कि बाबा जैसे दुख नहीं देते हम भी नहीं दें। कर रहे हैं कभी कभी थोड़ा डांट भी देते हो, डांटना भी नहीं। बाबा कहते डांटना भी नहीं, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। डांटो नहीं, शिक्षा दो पर रहम के साथ शिक्षा। बार बार किसको डांटने से और ही आत्मा जो है ना वो दुश्मन बन जाती है।
बिल्कुल, ये वही अगर हम अपने जिंदगी में आसपास देखें, सबॉर्डिनेट और जो बॉस का रिलेशनशिप है उसमें भी हर रिश्ते में जो है ये बात बिल्कुल सच बैठती है,
घृणा आ जाती है। आप तो परमात्म बच्चे हो, भगवान के हम बच्चे हैं, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है तो आप दुखी को सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम,
वेरी ट्रू,
अपने घर से। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों से करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना, अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है, है ना। कई लोग कहते हैं एक के बदलने से क्या होगा, है ना, एक के बदलने से तो कुछ नहीं होगा। अब बाबा कहते हैं एक के बदलने से ही होगा। जैसे देखो एक नेगेटिव माइंडेड है घर में, बहुत गुस्से वाला है, शराबी है, बहुत कुछ उसमें व्यसन है, बुराइयां हैं। अब एक व्यक्ति ही केवल घर में सब के नाक में दम कर देता है, एक व्यक्ति,
बिल्कुल एक व्यक्ति
सारा घर तबाह हो जाता है, नर्क बन जाता है एक व्यक्ति के कारण। अब कहेंगे बाकी तो सब अच्छे पर ये व्यक्ति ने तो घर को नर्क बना दिया है। तो एक व्यक्ति इतना घर को नर्क बना सकता है तो एक व्यक्ति घर को स्वर्ग भी बना सकता है। एक व्यक्ति अगर नेगेटिव काम कर सकता है इतना तो पॉजिटिव भी अगर एक करे तो घर को स्वर्ग भी बना सकता है। तो वही बाबा कहते हैं घर का वातावरण क्या हो जाता है, घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है।
बिल्कुल,
कई बार युद्ध का मैदान बन जाता है, उस समय अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना अच्छा। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने अपने साथियों से, अपने अपने कार्यकर्ताओं से न दुख लेना है न दुख देना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से, अभी कैसे शक्ति आएगी दुआ देने की, उस समय शक्ति आनी चाहिए ना तभी तो दुआ दे सकेंगे। तो बाबा कहते ऐसे समय पर आप दिल से अधिकार से कहो मेरा बाबा। शक्ति समझो उस समय नहीं है, बाबा से लो शक्ति, नेगेटिव शक्ति मत अपनाओ पर बाबा से उस समय शक्ति लो और कहो मेरा बाबा। और मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा कहेंगे, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। शास्त्रों में दिखाते हैं ना कि जब जब भक्तों ने कहा, हाँ, अपने इष्ट देव को पुकारा, कैसे वो इष्ट देव भागा भागा आया। वास्तव में ये इसी समय की यादगार है, आपको मेरा बाबा, तुरंत जैसे बाबा हाजिर हो जाएगा आपको शक्ति देने के लिए। अगर आपने दिल से अधिकार रूप में ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा, तो बाप हजूर हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए है ना। अब जैसे कोई बच्चा गिरा तो माँ तुरंत दौड़ेगी ना उस बच्चे को पकड़ने के लिए, उसको उठाने के लिए। उसने कहा मम्मी, तो जैसे मम्मी पहुंच गए, पापा इधर तुरंत, क्योंकि माता पिता है इसके लिए। तो परमात्मा हमारे लिए ही तो है ना। आपने कहा मेरा बाबा, देखो बाबा उस समय हाजिर हो जाएगा। तो अधिकारी बच्चे को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो नहीं सकता।
कम्प्लीट फेथ भी रखनी है,
बिल्कुल,
कि ये संपूर्ण विश्वास कि ऐसा हो नहीं सकता। जब मैं उसके रास्ते पर, बिल्कुल बहुत सुंदर बात है, जब मैं उसके बताए रास्ते पर, उसके श्रीमत पर हूँ, जो वो कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं जब पुकारूंगा बाबा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता।
बाबा की ये जिम्मेदारी हो जाएगी मुझे बचाने की, मुझे सहयोग देने की, मुझे शक्ति देने की, क्योंकि मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये सहयोग न दे असंभव है, तो परिवर्तन करके जाना। पहले पहले है स्व परिवर्तन, ये सोचना है मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। हम जबरदस्ती किसको बदल नहीं सकते। वो कहावत है ना, यू कैन टेक द हॉर्स टू द वॉटर बट यू कांट मेक इट ड्रिंक। अब एक घोड़े को तालाब के पास ले जाओ, कहो पियो पियो, नहीं पीना होगा तो जबरदस्ती थोड़ी आप पिला सकते हो। तो किसको जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते हो। मैं बदल सकता हूँ, तो हम आरंभ करें स्वयं से। पहले है स्व परिवर्तन, फिर घर का परिवर्तन।
यहाँ शिकायत जो आती है ज्यादातर पेरेंट्स को भी शीलू बहन, वो ये कि तो फिर मैं कहाँ तक आगे बढ़ने दूँ। जैसे आपने ये कहा कि, या वाइफ और हस्बैंड के बीच में भी, ये तो फिर बिगड़ते ही जाएंगे। या हस्बैंड भी अगर वो शराब पी रहे हैं, वो गुस्से वाले हैं, या वो, तो ठीक है मैं अगर चुप भी हो जाऊँ, या मैं एक्सेप्ट भी करूँ, मैं दुआएं भी दूँ, तो वो तो कभी बदलेंगे ही नहीं, वो ऐसे ही होते जाएंगे। लेकिन वो क्योंकि हम अपने मन में ये मान लेते हैं कि वो बदलेंगे ही नहीं, यू नो, समवेयर डीप डाउन। अगर हम देखें, जितने भी लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो हमने, क्या हमने दिल से उन्हें स्वीकारा है? हम क्योंकि नहीं कर रहे होते, हम अंदर से, ऊपर से कुछ भी ना कहें कि ठीक है मैं ये मानता हूं कि ठीक है वो जैसे हैं वो वैसे ही रहने देता हूं, मुझे परिवर्तन करना है। लेकिन हम अंदर से डीप डाउन हमारा वो हर्ट चल रहा होता है, हम वो उनको अपने को दुख देने के लिए अलाउ कर देते हैं।
और जैसे आपने कहा ना कि वो अंदर में हम सोचे तो बदलेगा ही नहीं।
हाँ, वो
ये सोच को हमें बदलना होगा। बदलेगा ही नहीं, क्यों नहीं बदलेगा?
मेरा बाबा जब है, जब मैं वो ताकत ले रहा हूँ
जी,
तो वो ताकत मुझे परिवर्तित तो करेगी ही करेगी।
हाँ,
मेरे आसपास के माहौल।
इसीलिए बाबा ने कहा पत्थर भी पानी हो सकता है, अगर मेरे अंदर शुभ भावना शुभ कामना है तो कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए इंग्लिश में कहावत है ना, एवरी सेंट हैज अ पास्ट। अब पास्ट में क्या होगा पता नहीं, एवरी सिनर अ फ्यूचर। सिनर सिनर ही नहीं रहेगा, वो तो सेंट बन सकता है।
कन्वर्जन के पूरे पूरे चांसेस।
इसलिए परिवर्तन क्यों नहीं होगा? हमारे पास कितने लोग आते हैं, वो कहते हैं बहन जी मैं क्या था, शराबी कबाबी, इतना गुस्से वाला, कैसे अवगुण थे मेरे अंदर और मैं कैसे बदल गया, ये बाबा का चमत्कार है। कई बार ऐसे भी होता है, कहते मेरी पत्नी तो मेरी गुरु बन गई, उसने मुझे सच्चा मार्ग सिखाया समझाया दिखाया। मैं तो मानता ही नहीं था इसको, मैं समझता था ये तो कोई काम की नहीं, लेकिन ये तो सचमुच इतनी बड़ी गुरु बन गई, इसके कारण मैं इतना बदल गया। मैं तो इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण मेरा जीवन इतना ऊंचा बन गया। पहले नहीं समझते, लेकिन पत्नी ने उसके प्रति शुभ भावना रखी रखी रखी, तो पत्थर भी पिघल गया।
और ये सहन, ये अपने आप को दया भाव में ना रखें। जैसे ही हम शुभ कामना या शुभ भावना रख रहे हैं, हम अपने आप को बहुत नीचे दर्जे पर ले आते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये तो मेरे को कभी समझेंगे ही नहीं, ये तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं। क्योंकि हमने अपनी हर चीज को शुरू में अगर देखें तो अपने पति की नजर में रख दिया कि अगर वो मुझे इस दर्जे पर लेकर आते हैं, अगर वो मानते हैं तभी मैं कुछ हूं। लेकिन जहां हम परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं तो हम परमात्मा की नजरों में ऊपर हो जाते हैं।
वी बिकम एम्पावर्ड।
हाँ,
दिस इज एम्पावर्ड हो जाते
हैं। हम अपने आप को वो जो वीकलिंग बना लेते हैं कि मैं डिपेंडेंट हूँ। बाहरी चीजों पे आप डिपेंडेंट हो सकते हैं लेकिन इंटरनल पावर पे, इंटरनल जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप डिपेंडेंट सिर्फ उस पर हो सकते हैं। और उस पर भी फाइनली वो ये नहीं चाहता कि आप डिपेंडेंट रहें, वो ये चाहता है कि आप खुद सशक्त हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं तो पहले है स्व परिवर्तन, फिर है घर का परिवर्तन, फिर है मोहल्ले का, फिर देश का, फिर विश्व का। आपका घर आश्रम बन जाए।
वो गृहस्थ आश्रम की हमने बात की।
हाँ, कई लोग कहते हैं ना ये ब्रह्मा कुमारी तो घर फिटाती। हम कहते हैं देखो बाबा तो कितनी ऊंची बात कर रहे हैं, आपका घर आश्रम बन जाए, फिटाने का तो प्रश्न ही नहीं। घर स्वर्ग बन जाए, गृहस्थ आश्रम बन जाए। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रय। जहाँ आश्रय मिलता है, जहाँ सहारा मिलता है, जहाँ सुख मिलता है, सहयोग मिलता है, होम स्वीट होम कहते हैं ना।
लेकिन आज आई थिंक मैक्सिमम लोग अगर एक पल के लिए रुककर पॉज लेकर अपने घर के बारे में सोचें तो ज्यादातर लोगों को वो युद्ध का मैदान नजर आता है। किसी न किसी समय पर वो युद्ध आना तो हमें घर पे ही पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम चाहे वो बच्चों के बीच में लड़ाई। और सबसे बड़ी बात जो हो गई है, हमने ये मान लिया है ये तो होगा ही, युद्ध का मैदान तो बनेगा ही, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है भाई। अशांति तो शांति रहेगी, शांति तो हो ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम लोग जो प्रोग्राम हमारा भी देख रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि ये पॉसिबल है नहीं, लेकिन हम ट्राई तो करके देखें।
तो बाबा तो बहुत ऊंची बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। केवल घर समझेंगे ना तो लगे हाँ घर है। आश्रम तो बड़ा पवित्र स्थान होता है, बहुत ऊंचा स्थान होता है, शांति का स्थान होता है, सुख का स्थान होता है। वैसे भी शास्त्र भी कहते गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। घर महाभारत का अड्डा बन गया है ऐसे कहें। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और दुआएं लेना, ये आश्रम का कार्य है। आश्रम में क्या करते हैं? गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी दुआ करो आशीर्वाद करो, तो दुआ देते लेते हैं, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा।
जो हमने घर में जो मंदिर बनाया है उसे तो हम बहुत पवित्र रखते हैं, और बाकी पूरा जो घर है उसमें वो नेगेटिव वाइब्रेशन इतनी ज्यादा रहती है।
तो इसलिए घर ही मंदिर बन जाए, घर घर मंदिर बन जाए। देखो बाबा कहते हैं सतयुग में कोई अलग मंदिर नहीं होंगे, क्योंकि घर घर ही मंदिर होगा। कोई अलग से कोई मूर्तियां नहीं होगी जिनकी पूजा होगी, क्योंकि घर घर में चैतन्य देवी देवताएं ही हैं। तो अलग से मूर्ति बना करके पूजा की।
इनफैक्ट वो तो बाबा तो ये भी कहते कि स्वर्ग के टाइम पे सतयुग में तो हम परमात्मा को भी याद नहीं करेंगे।
बिल्कुल,
उनकी कोई याद ही नहीं होगी हमारे पास,
जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब संपन्न है, सब सुखी है। तो बाबा कहते आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? देखो मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति क्या करती है? मूर्ति दुआएं देती है ना। हमेशा देखेंगे कोई भी देवी या देवता का एक हाथ सदा ऐसा होता है, वरदानी हाथ, दुआएं ही देता है। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं दो। मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी कहते हैं ना,
मुझ पे दया करो,
हैव मर्सी ऑन मी कह करके चिल्लाते हैं। तो आपको भी क्या देना है? दुआएं, ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो। शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। अब ये भी कई लोग नहीं समझते प्यार कौन सा। शरीर के प्यार को आत्मिक प्यार समझ लेते हैं, कहेंगे आई लव माई वाइफ, पर लव माई वाइफ माना क्या? यू लव हर क्वालिटीज, यू लव हर गुडनेस। केवल लव माना उसके शरीर से प्यार ही नहीं, परंतु उसकी आत्मा से प्यार। शरीर तो विनाशी है, शरीर से केवल प्यार है वो काम वासना का रूप बन जाएगा। और हम समझते बहुत नजदीक ही मेरे पास है, पोजेसिवनेस हो वो मोह का रूप बन जाएगा, तो ये तो विकार है। तो बाबा कहते शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है। आज की दुनिया में जो प्यार है ना, स्वार्थ का प्यार है। इससे पैसा मिलेगा तो प्यार है, पैसा नहीं मिलेगा तो प्यार भी नहीं
नहीं। और अच्छा चलिए, पैसे से भी अगर हम ऊपर उठ जाते हैं, हम कई बार कहते हैं कि नहीं हम पैसे के कारण नहीं कर रहे, स्थूल चीजों से भी उठ जाते हैं, तो जो इंटरनल इनसिक्योरिटी है, अगर ये नहीं होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, या ये नहीं होंगे तो ये नहीं होगा, पति मेरे नहीं होंगे, या जो भी रिलेशनशिप है तो मेरा क्या होगा, तो वो जो इनसिक्योरिटी है तब वो आप उस प्यार को पकड़ लेते हैं कि नहीं मैं आपके बिना नहीं रह सकता या रह सकती।
हाँ वो तो भी है, इनसिक्योरिटी के कारण भी वो फिर बेबसी हो जाती है।
हम कई बार अपने आप को कहते हैं कि मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मेरा प्यार तो बहुत सच्चा है, लेकिन अगर हम अपने आप को टटोले अंदर डीप जाएं तो वो कहीं ना कहीं मेरी अपनी इनसिक्योरिटी भी है विच यू नो वॉन्ट्स टू होल्ड ऑन टू।
इनसिक्योरिटी, डर ये भी है
भय। हाँ, हाँ, नहीं होगा आगे चल के क्या होगा अगर नहीं होगा, तो ये सारी चीजें,
क्योंकि भगवान मेरा सहारा है ये भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ी विडंबना यही है। इसलिए बाबा ने कहा ना उस समय बाबा को नहीं भूलो, मेरा बाबा, तो देखो बाबा कैसे मदद करने के लिए।
ज्यादा अधिकार रखो, आज हम ये कहते हैं कि अपने पिता पे हम साथ सबसे बड़ा अधिकार मानते हैं जब हमारी शादी नहीं, और उसके बाद हम कहते हैं, पति कहता है कि पत्नी पे मेरा सबसे बड़ा अधिकार है, या पत्नी भी ये कहती है, लेकिन जो बाबा ने हमें इतना बड़ा अधिकार दिया है कि आई कैन कॉल हिम एनी टाइम आई वॉन्ट।
बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो सर्वशक्तिवान है, वो अपनी शक्ति हमको जरूर बरसाएगा, हमको जरूर देगा, ये हो नहीं सकता। इसलिए फेथ भी बहुत जरूरी है, फेथ कैन डू वंडर्स, के मूव माउंटेन्स। तो बाबा कहते हैं आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्चे दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं पूर्ण होगा तो डोंट केयर करेंगे, इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना, और दुख न लेना न दुख देना। ये हमको करना है। तो सारी मुरली का सार है, दुआ दो दुआ लो, न दुख दो न दुख लो, सुख दो सुख लो। शिक्षा दो जरूर, लेकिन शिक्षा के साथ साथ मसी, रहम, क्षमा और शुभ भावना, शुभ कामना,
वही जो है वो हमें बचा सकती है, जो कि हम दुख भी ना ले और हमारी जो बात है वो वहां तक पहुंच भी जाए। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री बहन। ओम
शांति।
अपने सभी दर्शकों के साथ भी एक बार वही शेयर करना चाहेंगे कि जैसा बताया शिलू बहन ने सार जो है वो ये कि शुभ भावना और शुभ कामना, शुभ भाव यानी कि जब मैं आपको देखूं तो एक आत्मिक भाव से आपसे जब भी मिलूं, जब भी मुलाकात करूं, वो दुआ देता जाऊं, और शुभकामना जबकि आने वाले वक्त में कभी भी जब भी आपके बारे में, फ्यूचर में बारे में सोचा जाए तो वो शुभकामना रहे और वो आत्मिक भाव से ही रहे। अब इसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए, हम अपने आप को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आत्मस्वरूप मानने में, तब तक हम अपने आसपास वालों को नहीं मान सकते। तो इसीलिए जितना जितना हमारा परमात्मा के साथ संबंध गहरा होता जाएगा, बाकी सारे संबंध अपने आप स्वतः ही जो है वो सुंदर होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम श्रीमत पे चलते जाएंगे, अगर हम मान लें कि हम हर रोज जब लोगों से मिल रहे हैं तो हम उन्हें दुआएं ही देंगे, और जो उनकी नेगेटिविटी हमारे पास आ रही है उसे हम नहीं आने देंगे। एक और बात जो आज बाबा ने कही कि शिक्षा बहुत देते हैं, शिक्षा जब हमें खुद को मिल जाती है तो हमारा मन करता है कि अरे हम उसको भी बता दें, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम उनसे एक्सेप्ट करते हुए, एक क्षमा का भाव लेते हुए कि वो नहीं जानता कि वो क्या है, वो कौन है, तो वो एक्सेप्ट करते हुए हम अगर दुआएं देते जाएं, और तब थोड़ी देर बाद हम उसे शिक्षा भी दें कि ये ऐसे किया जा सकता था, बहुत सॉफ्टली अगर हम कहें बिना एक्यूज किए हुए, तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये जो गृहस्थी, इतनी खूबसूरत गृहस्थी है, जो आज हम एक हर में से हर कोई जो है घर को तलाशता है, रिश्तों को तलाशता है, सबसे ज्यादा दरार आज वही है, तो उसे आश्रम बनाने का प्रयास हमें ही करना है। और ये वर्षा, ये हमें जो अधिकार है परमात्मा से मिला है, जहां इस पूरे जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आती है या हम नहीं कर पा रहे, तो हम अधिकार सहित परमात्मा को पुकार सकते हैं। मेरा बाबा कहते ही वो चमत्कारी, उन्होंने हमें चाबी दे दी है शिलू बहन, अगर हम कहें तो वो सारे ताले खोल सकती है। तो अल्टीमेटली बात यहीं पे आती है कि दुआ दो दुआ लो, इस गृहस्थी को एक आश्रम बनाए, आश्रम जहां आश्रय मिलता है, जहां प्यार होता है, जहां शांति होती है, जहां महाभारत का युद्ध नहीं चल रहा होता, तो उसे बनाने का प्रयास करें, तो सचमुच जिस स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं वो यहीं संभव है।
कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आपके पास है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर जाकर उनका जवाब तलाश सकते हैं। नजदीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस ऑन awakening@pmtv.in or call us on 09999